أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم کنٹینیو کریں گے پہلے 139 پیج سے ہمارا کچھ حصہ پچھلے پارے کا رہتا تھا اس کے بعد پھر ہم اگلے پارے پہ چلیں گے ٹھیک ہے جن لوگوں کے پاس بکس ہیں وہ پیج 139 کھول لیجئے اور انشاءاللہ یہاں سے ہم پارا نمبر 8 کو کنٹینیو کریں گے پیج کیسے پلٹنا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے کو بھی پتہ نہ چلے ٹھیک ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ہم دیکھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ نے اپنی چیزوں کے تین حصے کیے ہوتے تھے اور جب ان کی فصلوں میں سے کسی سال اس حصے میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی نیت کی ہوتی تھی فصل نہ آتی تو کہتے کہ اللہ کی مرضی لیکن اگر ان کے بتوں کے نام پہ جب جگہ کی ہوتی تھی اگر اس کے اندر فصل نہ آتی تو اتنا ڈرتے تھے اپنے بتوں سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ والے حصے میں سے ادھر دینا شروع کیا بہت بڑی بات ہے کیا ہم اللہ اور رسول کے معاملے میں ایسے ہی معاملہ تو نہیں کرتے ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی بات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں وہ دین کو بہت محفوظ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے عمل کے لیے دیا ہے اس لیے نہیں دیا کہ ہم دین بنانے لگ جائیں اس کو ہائی لائٹ کیجیے اللہ نے مجھے آپ کو شریعت سازی کا کام نہیں دیا بلکہ کیا کہا ہے کہ شریعت پہ عمل کرو آپ اور میں جہاز میں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں ہم جہاز کی کرسیاں میز ہٹا کر اپنی مرضی سے سیٹنگ تو نہیں کرنے لگ جاتے نا کئی لوگوں کا دین کے معاملے میں آج یہی انداز ہے نعوذ باللہ اللہ کو اور پھر اس کے بعد رسول کو غلطی لگی یا وہ بڑے بھولے تھے یا ان کا انٹلیکٹ اتنا سٹرونگ نہیں تھا اور وہ دین اس طرح دے نہیں سکے اور بس ہم اپنی مرضی کا دین بنا کر پیش کریں گے تو یہ ایسے ہی لوگوں کی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو اس کے بعد کیا کہا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُوبْ عَلَيْنَا حالانکہ کوئی پوچھے گھر آپ نے بنا لیا جگہ آپ کو مل گئی استاد کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو ایک پکڑ کر کتاب بھی لکھ ڈالیں شریعت سازی کر لیں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ ہمیں شریعت بنانی نہیں ہے شریعت کو ماننا ہے آپ اور میں پاکستان میں رہتے ہیں جس کا جیسا بھی قانون ہوگا آپ اور میں مکلف ہے اس کو پورا کرنے کے ہمیں اور آپ کانسٹیٹیوشن بنا نہیں سکتے بس یہی اصول ہے دین کے معاملے میں کہ ماننے کا ذہن بناؤ منوانے کا ذہن نہ بناؤ کچھ لوگ دین میں آتے ہیں نا تو منوانے کی نیت سے آتے ہیں مانتے نہیں ہیں تو ایک اچھا طالب علم اور ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے جو رولز کو مانتا بھی ہے اور منواتا بھی ہے اگر آپ ٹیچرس ہیں نا تو آپ اس سارے کورس کے بعد جب اپنی کلاسز میں واپس جائیں گی انشاءاللہ تو آپ خود فیل کریں گی کہ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کا بیٹھنا بھی چبھے گا اگر وہ صحیح نہیں بیٹھے ہوں گے اور باقی بھی چیزیں غیر محسوس طریقے سے یہ کورس آپ کو اپنی کلاس کی مینجمنٹ کرنا سکھائے گا انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے دین کو ماننا ہے دین کو بنانا نہیں اس جملے کو ہائی لائٹ کیجیے ہم امتی ہیں ہمارا کام شریعت سازی نہیں ہے اس صورت میں ہم جتنی بھی باتیں پڑھیں ساتھ اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی رسومات تو نہیں ہوتی جن کو دین کا نام دیا ہوا ہے کچھ تو آپ سوچیں گے تو آپ کو فوراً یاد آ جائیں گی اور کچھ کے لیے آپ کو سوچنا سکھایا جائے گا ہوتا ہے کہ ہم وقت اور معاشرے کے ساتھ جب چلتے ہیں نا تو ہم وہی کرنے لگ جاتے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سختی سے قرآن اور سنت کے ساتھ جمع دے آیت 151 اس کے بعد جو آتی ہے جس کے بارے میں معروف کیا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھنا ہو وہ اس کو پڑھ لے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے کیوں وصیت نامہ ہے کبھی آپ سوچیں اگر آپ اس کے الفاظ پہ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ اللہ نے ہمیں اتنا مکمل دین دیا اتنا کمپلیٹ دین دیا کہ اگر آپ میں اس کے اوپر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلیں جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں فٹ سٹیپ پہ چلنا اردو میں ہم کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنا तो अगर मैं और आप कुरान सुन्नत के नक्शे कदम पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमें नबी सल्लम की शरीयत में जो चीज़ अपने लिए काबिल अमल दिखेगी वो सारी की सारी इस एक आयत में है कि जिसमें तौहीद से बात शुरू होके इंसानी मामलात से गुज़रते हुए हम शरीयत इस्लाम की बहुत बेसिक चीज़ों को देखते हैं। आप कह सकते हैं कि हम बदीहात शरिया, हर शरीयत में हर दौर में, जैसे नूह अलैहि सलाम से लेकर बाद के अल्लाह के नबी सल्लम के दौर के आने तक, हर वो चीज़ जो हर शरीयत में हलाल थी या हर चीज़ जो उस शरीयत में हराम थी, वो सारा कुछ एक जगह जमा करते हैं। इससे पता क्या चलता है कि अल्लाह सुबहाना ताला को इंसानों से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जो मामला फरमाते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। तो बदीहात शरिया कह लीजिए, उम्महात शरिया कह लीजिए, यूनिवर्सल ट्रुथ्स कह लीजिए, आयत 151 इसका नंबर याद कर लीजिए, नबी सल्लम की वसीयत है। आपने क्या वसीयत की थी? उम्मत आज इस आयत को पढ़ ले, उसको समझ आ जाएगी। आप कह सकते हैं कि इस एक आयत में पूरी शरीयत का खुलासा है, समरी ऑफ द होल शरिया। क्या करो डूस और क्या ना करो डोंट्स, लिख ले। ये इंग्लिश के दो लफ्ज़ आपको बहुत मदद देंगे, डूस एंड डोंट्स। इसको पढ़ते वक्त अपने आप को सामने रखें और सोचें कि जो करने को कहा है क्या मैं करती हूँ, और जिससे मना किया गया क्या मैं उससे मना होती हूँ। क्योंकि देखिए, अपना हिसाब तो करना ही पड़ेगा। जब तक मैंने आपने अपने आप को इस किताब की अदालत में पेश ना किया, फिर जाके अगली अदालत में बड़ी मुश्किलें होंगी। आज दुनिया में भी आप देखते हैं, किसी बड़ी अदालत में जाना हो, किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो, तो रिहर्सल करते हैं लोग, यूज़ टू करते हैं अपने आप को, चाहे ऐसे जाऊँगा, ऐसे खड़ा होऊंगा, ऐसे बात करूँगी। अगर आपने मैंने इस दुनिया में अपने आप को आखिरत की अदालत में पेश किए जाने के लिए तैयार कर लिया, तो फिर हम इस आयत को देखेंगे, कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैयं व बिल वालिदैन एहसाना वला तक्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। आप अगर इस आयत को बाद में जाकर अरबी में पूरा पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि डोंट्स के साथ आयत शुरू हो रही है। तो क्या चीज़ पता चली? पहली बात क्या है? तौहीद और शिर्क का फ़र्क, अल्लाह की मार्फत और जो शरीक हैं इनको इससे अलग कर दो। फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद में पहला हक माँ बाप का है। फिर आयत 155 में अल्लाह सुबहाना ताला कहते हैं कि ये कुरान बरकत वाली किताब है, इसकी इत्तबा करो। और हम क्या कहते हैं कि किताब को देकर खुश हो जाओ, इस किताब के तावीज़ बना लो, गले में डाल दो, बेटियों की शादी के मौके पर इस कुरान को सर पे रखो, रुख्सती कर दो कुरान के साए में। होता है आज ये हमारे माशरे में? तो क्या आपने मैंने किताब का हक अदा किया? आप खाने को पकड़ कर सर पे रख ले रोटी को तो पेट भर जाएगा, दवा के नुस्खे को पकड़ कर अपने माथे पर चिपका लें तो सेहत आएगी? नहीं आएगी। कुरान के साथ लोगों ने आज यही कुछ किया। आज हम सब अल्लाह का रहम मांग रहे हैं, अगर इस किताब को अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे तो बरकत आएगी और ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हकीकत में हम इस किताब की बरकतें समेटने वाले बन जाएं। दिल की गहराई से बोलिए आमीन। उसके बाद आयत 158, क़यामत की कुछ निशानियों की बात है। देखिए, क़यामत एक बहुत बड़ी हकीकत है और आके रहेगी, और क़यामत जब आएगी उस वक़्त मैं और आप तैयारी कर नहीं सकेंगे। आज करनी है, जितना वक्त से पहले तैयार होंगे उतनी क़यामत के दिन की सख्ती कम होगी। अल्लाह ताला कहते हैं, हल यंज़ुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका। क्या वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि उनके पास फ़रिश्ते आ जाएं, या उनका रब आ जाए, या उसकी कुछ निशानियां ही आ जाएं? तो ये आयत कुर्बे क़यामत की अलामाते कबीरा, लिख लीजिए, क़यामत की दो किस्म की अलामतें हैं, अलामाते सुगरा और अलामाते कुबरा। कुबरा की बात की जा रही है। आइए ज़रा सा अपना मुहासबा करते हैं इन निशानियों की रोशनी में। क्या मैं सूरज के मग़रिब से निकलने की मुंतज़िर तो नहीं हूँ? यानी जब आएगी सर पे पड़ेगी फिर जाके तौबा कर लूँगी, ये तो नहीं मेरा एटीट्यूड। क्या मैं तौबा करने में देर तो नहीं करती? कभी भी किसी गुनाह को छोड़ने को दिल ना चाहे तो अपने आप से कह लिया करें कि क्या पता मेरी ज़िंदगी का सूरज भी डूबने वाला हो और मैं तौबा ना कर सकूं। क्या पता चला, वो कयामत तो आएगी। आपकी मेरी कयामत तो किसी लम्हे भी आ सकती है, क्योंकि जो मर गया उसकी कयामत आ गई। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मौत से पहले तक तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है, फिर बंद हो जाता है। फिर इसके बाद इंसान मौत की डुबकियों में वो सारे मंज़र देखते हुए तौबा करना चाहेगा, लेकिन तौबा कबूल नहीं होगी। सोचिए अपने ऊपर लें, आ सकती है ना मौत किसी लम्हे भी, हम पे निजात आ रही हो सकती है कि नहीं? खड़े बैठे लेटे जागते सोते, कई लोग सोते हैं फिर उठते ही नहीं कभी। क्या रात को जब आप बिस्तर पे जाती हैं उस वक्त कभी ये ख्याल आया कि अगर मैं सुबह ना उठ सकी तो लोग मुझे किन लफ्ज़ों में याद करेंगे? ईशा की नमाज़ के बग़ैर सो जाएं और ये सोचें कि अगर मैं उठी ना, मेरी मौत के बाद पहला सवाल ही मुझसे जो होगा वो यही होगा, सुनाओ नमाज़ पढ़ के आए हो कि नहीं। हर दिन अपने आप को इस तरह सोचें, घर से निकलते हैं ना सोच के आया करें, पता नहीं मैंने घर आना है कि नहीं। एक दफ़ा बंदा ज़रूर पीछे मुड़ के देखता है, घर किस तरह छोड़ के आ रही हूँ, क्या मामले हैं मेरे। एक ईमान वाला हर वक्त गठड़ी बांधे हुए शख्स की तरह होना चाहिए कि जो ट्रेन के इंतज़ार में स्टेशन पे खड़ा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत तो अब इतने प्यार से आ जाती है पता ही नहीं चलता, और इतने दबे कदमों से आती है, क्या बिल्ली के कदम होंगे जो मौत के कदम है आज के दौर में। और हदीस है अल्लाह के नबी सल्लम ने ये फरमाया, यानी क़यामत के करीब अचानक मौतें होंगी, यंग लोगों की मौतें होंगी, जवान कसरत से मरेंगे। आज आप देख लीजिए, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी के लिए इसमें कोई भाम नहीं। किसी को शक है तो जाए, किसी को इख्तलाफ है तो जाए, इख्तलाफ करके दिखा दे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मौत तो बंदे के जूती के तस्मे से भी करीब है। ये जो लेसेस होते हैं ना, शू लेसेस, मैं जब शुरू से ये हदीस सुनती थी तो मैं सोचती थी ये क्यों कहा आपने, जूती तो चश्मा नीचे, हम तो और भी कुछ चीज़ें, हाथ है बस, अपने हाथों से करीब क्यों नहीं कहा? लेकिन बड़े होने पे समझ आई कि जब किसी को एकदम दिल का दौरा पड़ता है ना, तो सबसे पहले वो अपने पाँव पे गिरता है। निज़ा की सख्तियों में बंदा डूब डूब के जाता है, तो अपनी मौत के लिए तैयार है। मुझे आपको नहीं पता हम किस हाल में जाएंगे और क्या मामला होगा। तौबा में जल्दी कीजिए, तौफीक मांगनी है इंशाल्लाह, और जहन्नम से बचने की दुआएं करनी है। इसके बाद आयत 160 में अल्लाह की रहमत है, क्या एक नेकी करोगे तो 10 लिखी जाएंगी। अल्लाह के जमा तफरीक के खाते देखिए कितने प्यारे हैं, अकाउंट्स कितने सीधे हैं अल्लाह के, और हिदायत से प्यार से भरे पड़े हैं कि मन जा बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा। जो एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 मिलेंगी, और जो एक बुराई लेकर आएगा उसको एक से ज़्यादा नहीं मांगा जाएगा। होना क्या चाहिए था, एक नेकी पे 10 नेकियाँ तो एक गुना पे 10 गुना, अदल तो यही था। लेकिन पिछली बात याद रखिए, कतबाला नफ्सिहिर रहमा, उसने अपने नफ्स पर रहमत लिखी हुई है। ये अल्लाह की रहमत का अमली इजहार है, और मेराज के तोहफ़ों में से एक ये तोहफ़ा था कि ईमान वाले को अपनी हर नेकी का असर कम से कम 10 गुना मिलेगा। मसलन आपने 10 रुपये सदक़े में दिए, आपने 10 दिए ना, आपके पर्स में से 10 रुपये निकले, फरिश्ते 10 नहीं लिखते, वो 10 को 10 से ज़रब देकर 100 रुपये लिखेंगे। ये लीस्ट है, द लीस्ट मिनिमम अकाउंट इज़ 10 × 10, 1 × 10। अल्लाह इखलास हालात मुश्किलात तकलीफ़ों के साथ उसको बढ़ाता है। बस आप देखिए कि आप में से सब एक किताब ख़रीदते हैं, सब के लिए किताब की कीमत एक ही है। एक ने किताब भी ख़रीद ली, उसके पास अभी और भी बहुत है, उसको तो उस किताब के हो सकता है 10 ज़रब 10। बस अगर 100 रुपये की किताब है तो 10 के साथ लगा लीजिए तो उसके कितने मिलेंगे, 1000 रुपये का मिलेगा उसको इनाम। किसी के पास है ही उतने, वो कहते देखी जाएगी जो होगा। उसने वो 100 रुपये की किताब ख़रीदी, उसको 10 नहीं मिलेंगे, अल्लाह जानता है उसको 70 मिलेंगे। और किसी के पास कोई जमा पूंजी थी, किसी चीज़ के पैसे इधर उधर रखे करें, उसने और कुछ डाल डूल के कुछ कर लिया, उसके तो 70,000 भी बढ़ जाएंगे। जब गैब के ये पर्दे हमारे सामने दुनिया में खुलते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह के रस्तों में भागते हैं। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आप 10 मिनट की वॉक से इधर आई, फरिश्ता आपकी 100 मिनट की वॉक लिखेगा। आप रिक्शे में बैठी, आपने 100 रुपये दिए, आप यहाँ आई, फरिश्ता 100 नहीं लिखता आपके, उसने रोज़ के 1,000 रुपये लिखने हैं आपके। अगर रिक्शे वाले को पता लग जाए, कल से उसने कहना मुझे भी 1,000 ही दो, ये क्या बात है मुझे 100 देते हो और उधर 1,000। यकीन कीजिए, एक जुमले से अपने आप को बांध लें। मैंने तो जब इससे बांधा ना अपने दिल को, उसके बाद तो वो कहना चाहिए कि लेने की बजाय देने लगने लगे। और वो क्या है कि अल्लाह किसी का हक नहीं रखता। अल्लाह इतना गयूर है और अल्लाह इतना बड़ा बादशाह है। मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, कभी दिल छोटा ना करे। और जो दिल छोटे करके बैठ जाते हैं ना, उनको भी समझाएं, मिलना कहाँ से लेना कहाँ से है। और जितना अल्लाह के ऊपर नज़र लगती जाएगी, अल्लाह की रहमतें आप पे बढ़ती जाएंगी। और इसके बरक्स देखिए, गुनाह करते हैं तो एक ही लिखा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब तो वही हलाक होगा जिसका इरादा ही हलाक होने का हो। सच है ना, घर से नियत करके आए हैं फेल होने की, वही स्टूडेंट फेल होता है। जो खिलाड़ी घर से इरादा करके आता है कि मैंने हारना है, वही हारता है। वरना अल्लाह की इतनी रहमत के बावजूद कोई जहन्नुम में नहीं जाएगा। किसी दानिश्वर का कौल है, बदबख्त है वो शख्स जिसकी इकाइयाँ उसकी धाइयों पर गालिब आ गईं। इकाई धाई तो समझते हैं ना, 1 से लेकर या 0 से लेकर 9 तक इकाई सिंगल्स, और 10 से लेके फिर आगे 20 तक, और बल्कि 99 तक डबल्स हैं, फिर 100 से लेके आगे तिहाई हैं, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वही हलाक होगा जिसकी इकाइयाँ उसकी धाइयों पे गालिब आ गई। मतलब समझ गए, गुना एक एक करके ज़्यादा हो जाते हैं नेकियों की निस्बत, जो एक एक बदले में 10 लिखी जाती थी। अगर मैथमेटिक्स मज़बूत है ना, तो आप कह लीजिए कि हर एक नेकी के मुकाबले में बंदा 10 गुना करता है, इसीलिए हलाक हो जाता है। अल्लाह हमें बचा के रखे। 1 से 9 और 10 से आगे जो जो है, एक शख्स एक एक करके नेकियों से ज़्यादा गुना करे, वो तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। हम अपना मुहासबा करें, क्या मैं 10 गुनाहों के मुकाबले में एक नेकी करती हूँ? अगर हमने पास होना है तो नेकियों में नंबर लेने हैं इंशाल्लाह। आपने एक नेकी की तो आपके अकाउंट में इसके 10 नंबर लग गए, तो क्या इसके मुकाबले में 10 गुना तो नहीं करती कि 10 का नंबर ज़ाया हो जाए, यानी वो नेकी ख़त्म हो जाए? अब इस मेयार पर ज़रा हम अपनी नेकियों और बदियों का पर्चा बना कर देखें, तो नतीजा हमारे हाथ में होगा। लेना चाहते हैं अपना रिज़ल्ट कार्ड दुनिया में? वहाँ जाके हैरत नहीं होगी? देखिए, आप में से अक्सरियत स्टूडेंट्स की है ना, जिसम पेपर करके आते हैं, घर आकर रफ़ मार्किंग नहीं करते। मैं तो करती थी, आते ही रस्ते में करती थी, फिर जल्दी से बुक्स खोल के आके जो ज़रा से डाउट्स होते थे चेक करके। और अल्लाह जानता है कि जब पेपर के रिज़ल्ट आता था, जो मैंने चेक किए होते थे, उससे 19-20 ही करीब होता था, बल्कि अच्छी ही थी, लीनियट ही कर देती थी, वो ज़्यादा ही दे देते थे। मैं समझती थी कि मैं अपना पेपर चेक करूँ तो मैं ज़्यादा कम नंबर दूँ अपने आप को। चलिए, अल्लाह का शुक्र था। आप और मैं सोचें कि आखिरत के नंबर मैं और आप अपने आज लगा सकते हैं। दूँ आपको एक दिन ये हिसाब, कोर्स ख़त्म होने से पहले अपना आखिरत का पर्चा हल करें, लिख लें इंशाल्लाह। एक एक्टिविटी करेंगे पूरे किसी दिन, यकीन करें उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस बुलाने पड़ेंगे। मैं सच कह रही हूँ, अगर हमारा शऊर जाग चुका है ना, तकवा आ चुका है, खुद एहतसाबी हो चुकी है और ख़ुद को अपनी नज़रों से देखना शुरू कर दिया है, तो हम बेहोश हो सकते हैं कि अल्लाह की बना मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक एक पर्चा, सिर्फ नमाजों के पर्चे अलग कर लीजिए, ज़कात के अलग करिए, माँ बाप से ताल्लुक़ का पर्चा अलग करें, पसीने तो अभी सोच के आने लग गया। अल्लाह ने आपको मुझे किसी शॉर्टकट से नहीं गुजारना। दुनिया में शॉर्टकट एक है, तौबा का। तौबा कर लीजिए आज, बैठे बैठे पिछली ज़िंदगी पे शर्मिंदगी, रिग्रेट, आइंदा से इसलाह, اللہ شام سے پہلے سارا نامہ اعمال بدل سکتا ہے. اس دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں. صبح و شام ہمارے گناہوں کی وجہ سے کتنی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں, اس کو بھی نوٹ کریں. نیگیٹو مارکنگ سنی بھی ہے؟ کبھی کبھی یہ پیپرز میں ایسا کہتے تھے نا, اگر آپ نے 5 کی بجائے 6 سوال کر دیے تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. پھر جس سوال کے سب سے کم نمبر ہوں گے نا, وہ کاؤنٹ کریں گے اور سارے سب سے اچھے نمبر ضائع کر دیں گے. ہوا کبھی آپ میں سے کسی کے ساتھ؟ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. اللہ مجھے آپ کو بچائے. اور یہ موضوع پڑھنے کے بعد تو غم لگ گیا کہ اللہ کہیں میرے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. جنت صرف خواہشات سے نہیں ملے گی, اعمال سے ملے گی. اور جنہوں نے سوچا ہوا نا خواہشوں سے ملے گی, وہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے کوئی فلم لگا کر بیٹھے ہوں اے سی میں اور آرام سے مزے موج کر رہے ہوں, اور جب بات کرے اللہ کی کہیں کہ بڑا غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا. بڑا اسٹرانگ اینڈ ہے سورۃ الانعام کا. قل ان الصلاۃ و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے, میری قربانی, میری عبادت لا شریک لہو, و بذالک امرت و انا اول المسلمین. بندہ کہتا ہے کہ میں رب کو چھوڑ کر کسی اور کو مان لوں؟ اور یقین کیجئے کہ اگر اللہ آپ کے نصیب میں کر دے آپ کے ماں باپ پہ رحمتیں کر دے, آپ قرآن کا لفظی ترجمہ تو پڑھیں. آپ دیکھیے میرے سامنے صرف عربی کا قرآن کھلا ہوتا ہے, یہ ابھی بھی دیکھ لیجئے آپ. اور مجھے تو اردو میں پڑھ کے مزہ ہی کوئی نہیں آتا, مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. اور آپ کو بھی دعا دوں گی کہ اللہ آپ کو عربی سے اردو پڑھنے والا بنا دے, ادروائز پھیکی زندگیاں آپ کی. آپ جو مرضی بن جائیں, پروفیشن کے اعتبار سے, شادی ہو جائے بڑے اعلیٰ گھر میں, بچے ہو جائیں آپ کے بڑے فرما بردار, آپ کے شوہر اس شہر کے ایم پی ایم این اے لگ جائیں, سب برابر ہیں اگر آپ کو قرآن نہیں سمجھ آتا. اور اتنی بڑی دولت کو ایک مسلمان ملک کے لوگوں نے اتنا پیچھے ڈال دیا ہو, یہ وجہ ہے اس ملک کے پیچھے رہنے کی. 1947 میں اگر کوئی ایسا شخص محکمہ تعلیم کے اندر آ جاتا کہ جو ہمارے اس سلیبس اور ہمارے اس کورس میں اس قرآن کے لفظی ترجمے کو ڈال دیتا, میں کہہ سکتی ہوں یہ جو دھکے کھائے ہیں نا چار نسلوں نے, یہ نہ کھاتے. 70 سے اوپر ہو گئے سال اور آج تک ہمیں منزل ہی نہیں ملی, رستے ہی نہیں پتہ, جا کدھر ہیں, جانا کدھر ہے. وہ کہتے ہیں نا کھوئی بھی بھیڑے ہیں ہم, بھیڑ بن گئے, بھیڑ چال چلتے چلتے. تو بہرحال سورۃ الانعام ختم ہوتی ہے تو اگلی سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الاعراف کیا ہے؟ اعراف اس مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا. یہ سورۃ ان تمام لوگوں کو بہت شوق سے سننی اور پڑھنی چاہیے. کون بھلا, سوچیے ذرا, جو نیکیوں کے معاملے میں بڑے ٹھنڈے ہو کر بیٹھتے ہیں, بڑے ٹھنڈے ہیں, مال کمانے میں گرم, پیسہ کمانے میں گرم, کھانے پکانے کھلانے جانے پیسے میں گرم, شاپنگ میں گرم, انٹرٹین میں گرم, لیکن ٹھنڈے ہیں تو نیکیوں کے معاملے میں ٹھنڈے ہیں. اور کہتے کیا ہیں, کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسا مقام آنے والا ہے, صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے اعراف پر روک دیے جاؤ گے. جی, اور سورت کے بالکل شروع میں پہلے ہی رکوع کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے اعمال ناموں کے اور پلڑوں کے تلنے کی بات ہوگی. یعنی نیکیوں کو ہلکا نہ جانو, اٹھو, نیکی بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی قدر کرنا سکھا دیں. اور سورت کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نصیحت بھری کتاب کھلوا رہے ہیں. اور اللہ کی اس کتاب کو لے لو خوف کے بغیر, کسی جھجک کے بغیر, اور اس کو دوسروں تک پہنچا دو. اگر اس ویکینڈ پہ آپ پھر یہ کوشش کر لینا تو پچھلے ویکینڈ کی طرح, آپ کو پتا کہ پچھلے ویک سے اس ویکینڈ تقریباً میرا خیال ہے 30-40% لوگ زیادہ ہو گئے. اس ویکینڈ پہ بھی جا کر لوگوں کو کہہ دیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمومنین. آپ کو نہیں سمجھ آئی ہوگی بات, لیکن اللہ نے آپ کو مجھے کہہ دیا کہ لوگوں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے اپنے نبی کی طرف اتاری ہے, آپ کا دل تنگ نہ ہو اس کے معاملے میں, دل کھولیں اس کتاب کے ساتھ. और ताकि इसके ज़रिए वॉर्न कीजिए, और नसीहत है मोमिनों की लिए इत्तबी उमा उन्ज़िला इलैकुम रब्बिकुम, और इस किताब की पैरवी करो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ उतारी है, और इसके अलावा औरों की पैरवी ना करो। क्या पता चला, पहली आयत में अल्लाह एक ऐसी नसीहत भरी किताब खुलवा रहे हैं, एक ऐलान हो रहा है कि लोगों जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ गई, वो किताब आ गई। दिलों की तंगियाँ दूर कर लो, दिलों की घुटन को दूर कर लो, और अल्लाह की इस किताब को ले लो, खौफ के बग़ैर, झिझक के बग़ैर दूसरों तक पहुँचा दो, और दूसरों की ख्वाहिशों और मर्ज़ी की बजाय अल्लाह की मर्ज़ी पे चलो। कल मेरे लिए बहुत ही तशक्कुर और सूदिंग एक्सपीरियंस था आप लोगों के वो ख़त पढ़ना जो आपने दिए। सबने नहीं दिए अभी, कौन कौन है जिसने नहीं दिया? इसके बावजूद भी एक बड़ा पुलंदा था और मैंने शाम को खोल के पढ़े, पहले यहीं पढ़ लिए थे आधे को, तजस्सुस बहुत था, फिर घर में जाके पढ़ा, जो मेरे पास थे मैंने कहा है मैं आपको लव लेटर पढ़ाऊँ। किससे लव आपका दिखा उसमें? जो मुझे खुशी हुई सबसे ज़्यादा, 100% लोगों ने ये कहा है कि अब उन्होंने आगे से कुरान सीखना है। ऐसे ही है ना, वो कैसे सीखना है, सुबह सीखना है, शाम सीखना है। और माशाल्लाह मुझे पढ़ के हैरत हुई कि आप में से शायद ही कोई मास्टर्स और एमएससी और एमफिल और बीएससी से नीचे हो। यकीन करें जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, एक साल ज़िंदगी का दे दें अपनी इस किताब को, ये लव आपका इस किताब के साथ अल्लाह के लव में बदल जाए। मैं कह सकती हूँ अगले सालों में आप कुछ और ना करें, मैं आप सबको इस शहर के सारे स्कूलों में टीचिंग का प्रोफेशन दिलवा दूँ, जहाँ मेरी सिफारिश हो सके मैं करवा दूँ। आप कुरान पढ़ जाइए, इसके बग़ैर ना जाएं दुनिया से। बहुत मुझे खुशी हुई, एक एक आपका ख़त मैंने अब पढ़ा, कुछ के तो एक से ज़ायद बार भी पढ़े। और मैं कह रही थी कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, आपको भी दिया ही नहीं किसी ने, या दिया भी है या चले वक्त आपका निकल गया। अब यकीन करें ये जगह आपकी गारे हिरा बन जाएगी, इसके ख़िलाफ़ कोई बात ना करे, अपने ख़िलाफ़ वबाल जमा करेगा वो बंदा जो इस हॉल के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा और इस मस्जिद के बारे में कुछ कहेगा। क्योंकि ये आपकी मेरी हिदायत गाह बन रही है, ये आपकी मेरी हिरा है, जहाँ पहली दफ़ा कुरान समझ आते वही तूर है, वही तो आपके दिल पे कुरान का नज़ूल। और जिसने हक़ के रास्ते में मुखालफत की, जाकर देखिए उनका कुछ ना बना, हक़ का रास्ता कोई ना रोक सका। तो ज़ुबान को संभाल के बात करनी है अल्लाह के बारे में, क्योंकि मामला बंदों से नहीं होता। हक़ के मामले में जब कोई बोलेगा और बेतुका बोलेगा और बेकार बोलेगा, लापरवाही से बोलेगा, किसी भी जज्बे से बोलेगा, याद रखिए फिर अल्लाह उसका दुश्मन बनता है। ये तो अल्लाह ने नबियों के ज़िंदगी में करके दिखा दिया, हम आप तो किसी भी जगह की कोई हमारी औकात नहीं है। लेकिन इस किताब को अपने दोनों हाथों से पकड़ लें, एक बंदा महरूम ना रहे इस जगह का। ये तो वो किताब है जिसने आपकी ज़िंदगी खूबसूरत करनी है, और आपके घर वालों को खूबसूरत करना है, और आपके घरों को खूबसूरत करना है। मैं कहती हूँ सारी दुनिया बेचकर अगर बंदा इस चीज़ को ले सके तो ले ले, ये क्या बड़ी बात है। क्या कोई मॉल्स होंगे किसी शहर के, और क्या वहाँ की कोई कह लीजिए कि फन प्लेक्सिस होंगे, और क्या रेस्टोरेंट्स होंगे, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जहाँ बैठकर आप कुरान सीखते हैं। ये वो सुपर सात आसमानों के ऊपर वाले का फ़ैसला था कि आप यहाँ बैठे हैं, इसकी कदर कर लें। देखकर खुश नहीं हो सकते ना तो परेशान ना हो, वरना अल्लाह आपको हमेशा परेशान रखेगा। कितनों के दिल की कली खिल रही है इस किताब के साथ, और इतना हल्का सिलसिला है ये दीनों दुनिया। तो मैं कहती हूँ अब अगले साल गली गली में जाके रमज़ान में जाके सुना दें, इससे भी हल्का कोई दौरा कुरान हो सकता है ज़िंदगी में कभी सुना? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब तर्जमा पढ़ा जाता है या अरबी आयतें पढ़ी जाती हैं तो नए लोग होते हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा होता, उनका दिल एक होता है पारा पूरा हो। तो इसमें तो 100 बातें अपनी हैं। मुझे बताइए कोई एक बात आपको दूसरों के आज तक पता लगी, कोई मसलक की बात आई इसमें, कोई जमात फिरके गिरोह तासब कोई बात आई है? गम तो अपना ही बड़ा हुआ है, हसद निकालना है, सब्र लाना है, बुखल निकालना है, गुस्सा ख़त्म करना है, अपनी जान को लाले पड़े हुए, हमें तो अपनी बड़ी फिक्र है, हमें तो पता नहीं दूसरे घर में कौन क्या कर रहा है। अगर आपको मुझे इस किताब की समझ आ गई ना, तो मैं कहती हूँ कि क्या वो दावतें जो हम प्यार से अपने प्यारों की करते हैं ना, किसी की शादी होने पे, किसी के उम्रे से आने पे, किसी के हज पे जाने से, हम इस किताब के लिए वीकेंड पे दावतें करें, सब अपने घर में दावत रखें वीकेंड पर, और अपनी दोस्तों को और अपनी सहेलियों को बुलाएं, क्योंकि इस किताब का प्यार यही तुम्हारी ज़िंदगी का फैशन है। हमारे पास और है क्या, और चाहिए भी कुछ नहीं इसके बाद। तो अल्लाह कहता है इस किताब को ले लो और दूसरों की ख्वाहिश और मर्ज़ी की बजाय अल्लाह की मर्ज़ी पे चलो। फिर जुमला बोलूँ, आधा मैं बोलूँगी आधा आप बोलेंगे, अनाए सगीर को अनाए कबीर के आगे झुका दो। मैंने कल अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन तजुर्बा किया जब नमाज के बाद आपको ये चंद बातें बताई। हर नमाज में अपने आप को कहा करें चल उठ, अपने आप को डांटा करें उठ चल सबसे बड़े के आगे झुक, फिर आपको पता चलेगा वो अकबर क्या है और मैं असगर क्या हूँ। हमने नमाज़ें भी पढ़ी हैं तो अपनी बड़ाइयों को दिल में छुपा के अल्लाह को भी कहते तू भी बड़ा मैं भी बड़ी, हम सारे ही बड़े, अल्लाह हम दोनों बड़े बड़े हैं। ऐसे नहीं दुनिया में जीते। और मुसलमानों की जो आज दुर्गत हो रही है ना, ये बता रही है कि इन्होंने अल्लाह को बड़ा समझा ही नहीं है, तभी तो आज ठोकरों में। वी लिक द बूट दैट किक्स अस, वही जूते चाटते हैं जो हमें ठुड्डे मार रहे हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आती। फिर इसके बाद देखिए आयत नंबर 6, 7 और 8, मुहासबे के नुक्ते नोट कीजिए। क्या मुझे इस बात की फ़िक्र है कि क़यामत के दिन मेरी नेकियों का पलड़ा हल्का रह जाएगा? हमारी ज़िंदगी में नेकियां करने के कितने मौाक़े आते हैं, फिर हम क्यों नहीं करते? दूसरा नुक्ता, क्यों कदर नहीं करते? एहसास नहीं है जिस चीज़ की अहमियत हमारी नज़र में होती है, इसके लिए हम कोशिश भी करते हैं और इसके लिए हम मेहनत भी करते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी इसके गिर्द घूम रही होती है, और इसके बरक्स जब हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते तो इसकी परवाह नहीं करते। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फ़िक्रमंद बना दे, आमीन। दुनिया में हम अपने मर्तबे की कितनी फ़िक्र करते हैं, और क़यामत के दिन इंसान भी तोले जाएंगे। जिसके दिल में इखलास होगा वो बहुत भारी हो जाएगा। नोट करें इस जुमले को, इखलास का वज़न होगा क़यामत के दिन। हाउ मच प्योर यू आर। और जिसके दिल में निफाक, कुफर और तकजीब होगी वो हल्का होता जाएगा मच्छर के पर की तरह। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में तौफीक अता करे नेकी करने और इसके लिए कोशिश करने की। एक मिसाल देती हूँ, आपके पास सोने का एक सेट है, खूबसूरत जड़ाओ। आपको याद है कि माँ ने कहा था ये पूरे 5 तोले का शादी में आपको दे दिया, किसी मजबूरी में बेचना पड़ गया। शौहर कहते लाओ बेगम मैं फिर बनवा दूंगा, ज़रूरत पूरी करते हैं। आप कहती है ठीक है ले जाएं। कितने को का होगा? आप फौरन हिसाब लगाएंगे, अच्छा सोना तो आज इतने का है, इसको ज़रब दे दूं 5 से, इतने का होगा। मसलन अगर मिसाल है कि आज अगर 70,000 का तोला है तो 5 से ज़रब दे दीजिए तो वो उतने का होगा। इसके बाद देखिए आयत नंबर 11 से 19 तक आदम और शैतान का किस्सा है। इन आयात को अगर अना की रोशनी में देखें तो यही है इस पारे का मौजू, अना का। बस लोग अना का लफ्ज़ सुनते ही परेशान हो जाते हैं कि अना तो बड़ी बुरी चीज़ है। तो बात क्या है, कुछ बातें हो गई, कुछ खुलासे में कर लीजिए। अना कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं, जिसको मैं कहते हैं ना अना, अरबी में अना है तो उर्दू में मैं है। मैं इंसान के आदमी होने का एहसास है, मैं कुछ कर सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में एक मकसद देकर भेजा है, मुझे खिलाफत की जिम्मेदारियाँ देकर भेजा है। इस एहसास के होने का नाम अना है। अल्लाह ताला बंदे को दुनिया में लाता है कि कुछ करो। इंसान के सिवा और किसी मखलूक में अना नहीं होती, जानवरों में तो बिल्कुल भी नहीं होती। बस इंसान बहुत मुख्तात होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या करूं, मैं क्या पहनूं। जानवरों में ये सब बातें नहीं होती। पहली बात क्या है कि इंसान के अंदर अना मौजूद है, और दूसरी बात यह कि इस्लाम अना को मिटाना नहीं चाहता बल्कि अना को उसके मुकाम पे रखना चाहता है। अना दो तरह से बिगड़ती है, कैसे? या तो अपने मुकाम से गिर जाती है या मुकाम से बढ़ जाती है। वही शुगर वाली मिसाल ले लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं जब टायर के अंदर ज़्यादा हवा भर जाती है तो उसके फटने का डर होता है, और जब हवा घट जाती है तो टायर के पंक्चर होने का डर होता है। तो गाड़ी कब चलेगी? जब टायर की हवा बिल्कुल मुतवाजन होगी। इस दुनिया में रहते हुए हमें एक मुतवाजन यानी बैलेंस्ड अना की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ये नहीं होगी तो ज़िंदगी में काम ही नहीं होगा। हर वक्त तो हम फैसले करते रहते हैं, मसलन मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ये करूँ या ना करूँ। ये लफ्ज़ जो मैं है ना, ये क्या है? ये अना है। मुझे अल्लाह ने पैदा किया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये जितना इंसान का हिसाब किताब है, इसमें मैं की वजह से हिसाब होगा। मैं जानवरों में चूँकि अना नहीं, वो मजबूरे कुल हैं, इसलिए ना जज़ा है और ना उनकी सज़ा है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए फितरी तौर पर कुछ तरीके रखे हैं जिससे अना मुतवाजन रहेगी। जब ये बढ़ जाती है तो इंसान अपने मुकाम से ऊपर होता है और अना कबीरा पर पहुँचता है। वो कौन सी अना कबीरा? सब बोल दें। अल्लाह की ज़ात। अना अल्लाह में है। सूरह तौहा की आयत 14 में मूसा से फरमाया, इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह में अना है, और ये है असल अना जिसको अना कबीरा कहते हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी में अना को अना कबीरा यानी इनफिनिट ईगो, और इंसान की अना को अना सगीरा यानी खुदी का नाम दिया गया, फिनिट ईगो। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान की अना मुतवाजन रहे, जबकि शैतान और बुरा नफ्स चाहता है कि वो कबीरा पर आ जाए, खुदाई के दर्जे पर आ जाए। जैसे फिरौन ने कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। जैसे नमरूद ने कहा कि मैं ज़िंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, तीसरे पारे का वाक़या याद कीजिए, अना उही व उम्मीद, उसने भी अना बोला था लफ्ज़। अल्लाह ताला ने इसका एक फितरी तरीका ये रखा है कि दिन में बार बार ये जुमला बोलो। क्या? ए अल्लाह तू मालिक मैं ग़ुलाम, तू आका मैं तेरा बंदा। इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। जी, अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे की अना इस रब की अना की मती रहे। अब जिस बंदे के अंदर ये बात आ जाती है वो कामयाब इंसान है। इसके अंदर बहुत मुस्बत सोच पैदा होती है, अच्छे काम करता है। जब नमाज़ें पढ़ता है तो इसकी अना सगीरा को अना कबीरा के आगे झुकाया जाता है। नमाज में रुकू और सजदा, ये सारे काम इंसान की अना तोड़ने के हैं। नोट कीजिए ये बात। खड़े खड़े क्यों नहीं नमाज़ पढ़ी जाती? बैठे बैठे क्यों नहीं पढ़े? और यहाँ मैं उन सब सिस्टर्स को भी ख़ास तौर पे कहूँगी जो बिला वजह सजदा नहीं करती या बिला वजह खड़ी नहीं होती, सारे काम भाग भाग के कर रही हैं, किचन में खड़ी, काम कर रही, इस्त्री कर रही, नमाज के लिए आकर ज़मीन पे बैठ जाएंगी, कहेंगी मैं काम नहीं कर सकती। तो ये फिर वो टेस्ट तो पूरा नहीं होगा ना जिसके लिए ये काम है। तो नमाज के जो एक्शंस हैं, रुकू, सजदा, झुकना, ऊपर करना, नीचे करना, असल में ये इंसान की अना तोड़ने के लिए होते हैं। फिर वो ज़ात ही बताती है कि क्यों इस दुनिया में आए हो, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वो हमें बताता है कि हमने करना क्या है। सारी कायनात को हमारे आगे झुका दिया, फरिश्ते हमारे काम के आगे झुके हुए हैं। फरिश्तों का आदम को जो सजदा था, ये असल में इस बात का इजहार था कि इंसान का मुकाम इसकी अना इस दर्जे पर हो कि फरिश्ते भी इसको सजदा करें। और कायनात की हर चीज़ इंसान के लिए मुसख़्खर कर दी, सूरज, चाँद, सितारे, हवाएँ और बादल सब इंसान के लिए काम कर रहे हैं। इंसान को ऊपर उठाया और बताया कि अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन तरीके से पैदा किया। सूरत बनी इसराइल में क्या आता है? वलकत करमना बनी आदम, बेशक हमने इंसान को इज्जत दी। जो इंसान अपने आप को पहचान लेता है वो ठीक काम करता है और वो अपने आप को ज़ाया नहीं करता। चलिए यहाँ अपने आप से पूछिए, आज तक की ज़िंदगी में क्या मैंने अपनी हस्ती को सही पहचाना? खुदकशी करने का तो वो सोच भी नहीं सकता। फिर होता क्या है कि जब बंदा अपनी जगह पर रहता है तो अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा लगता है। हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो अल्लाह के हुक्मों की है। वो अल्लाह ताला से इसकी मर्ज़ी मांगता है और अल्लाह से पूछता है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान के अंदर फिर अना की कमी होती है। जब इंसान अना के मुकाम से गिरता है तो लोगों से पूछता है, लोग क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही बिकम्स पीपल प्लीज़र, लोगों को खुश करने वाला बन जाता है। अल्लाह ताला की इताअत से खुद एतमादी आती है, अपने आप को अहम समझता है, अच्छे काम करता है। लोगों की तरफ जब आता है तो इंसान के अंदर गुनाहों की रग़बत आती है, परेशानी आती है, शैतान हमें नीचे खींच रहा है और अल्लाह हमें ऊपर उठा रहा है, और ये हर वक्त हो रहा है। जो इंसान अपने आप को मतवाजन रखेगा इंशाल्लाह वो अच्छे काम करेगा। आप देखते हैं ना दुनिया में, जो एक काम अच्छा करता है वो फिर दूसरे भी अच्छे करता है, और एक बुरा काम करेंगे तो बाकी भी बुरे होने लगेंगे। इसके बरक्स दूसरी सूरत क्या है, इंसान नीचे चला जाता है। मसलन हम अपने आप को कैसे पहचानेंगे कि हमारी अना घटी हुई है या बढ़ी, सही है या गलत? जैसे हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वैसे अनह का प्रेशर भी चेक किया करें। कुछ चीज़ें हम देखेंगे जिसकी बुनियाद पर पता चल जाता है कि इंसान की अनह कम है या ज़्यादा। अब आप ये पॉइंट्स नोट करिए। मसलन अनह का बढ़ना क्या है? नंबर एक, इंसान बेअदब हो जाता है। ये जो बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं ना, बेअदब, अनह बढ़ी हुई, आपने उन बिगाड़ के उनको इतना बड़ा कर दिया, सर पे चढ़ गए। तो दूसरी बात है कि इंसान बदतमीज़ हो जाता है। इसी अना ही ने इबलीस को रजीम और मरदूत बना दिया था कि अल्लाह के हुक्म सजदे के बाद पहला लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से निकला, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। आदम की अना चूँकि अल्लाह ताला के आगे झुकी हुई थी, इसलिए कहा कि रब्बना, बोलिए, ज़लमना अनफुसना, ए रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। इसी तरह दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि इंसान अपने आप को चेक करे, मैं अना के किस मुकाम पर हूँ। मसलन कुछ बोल देती हूँ ताकि हम अपनी मौजूदा रिपोर्ट तो चेक करें कि मैं किस पोजीशन में हूँ। पहली बात क्या है कि क्या मैं शऊर के साथ नमाज़ पढ़ती हूँ? कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं कुछ नहीं हूँ? यानी अगर आप हर वक्त ये कहती हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मान लीजिए कि आपकी अना असल से घटी हुई है। फिर बाज़ लोग कुछ होने से पहले कहते हैं मैंने तो पहले ही कह दिया था, मुझे तो पहले ही पता चल जाता है। है कुछ लोग ऐसे, मुझे पहले ही पता था। क्यों भाई, आपको गैब पता है? जब अगला पारा पढ़ेंगे ना आपको लग पता जाएगा कि ये अना का अगली सीढ़ी कौन सी है। तो कितना ज़रूरी है अपना बैलेंस सेट करना। पहली चीज़ ख़राब होगी अगली ज़रूर ख़राब होगी, ठीक है? तो चेक कीजिए, क्या मैं अक्सर ये जुमले तो नहीं बोलती, मैंने तो पहले ही कह दिया था, मुझे तो पहले ही पता लग जाता है। अच्छा, बाज़ तो फिर इतने कड़वे जुमले बोलते हैं, फ़लाँ की तो ज़ुबान ही काली है, उसने देख लिया अब चीज़ रूट टूटेगी, उसकी तो नज़र ही बड़ी लगती है। तो अपनी बड़ाइयाँ बयान करते रहना तो समझिए कि आपकी अना भरी हुई है। तीसरी, मेरी तो बख्शिश ही नहीं होनी, मैंने तो जाना ही आग में है, ये जुमला तो नहीं आप बोलती? अगर बोलती हैं तो फिर आपकी अना घटी हुई है। इसी तरह कुछ और नुकात हैं जिनकी रोशनी में हम अपने आप को पहचान सकते हैं। चंद जुमले नोट करें। क्या मैं तनकीद को बर्दाश्त कर लेती हूँ? यानी अगर कोई मुझ पर तनकीद करे तो मुझे क्या महसूस होता है? अगर कर लेती हूँ तो बराबर है, अच्छी बात है, फिर आपकी अना का लेवल ठीक है। तनकीद सुनकर गुस्से में आ जाएं तो मान लीजिए कि आपकी अना बढ़ी हुई है, और तनकीद सुनकर टस से मस ना होना और ठुस हो जाना तो मान लीजिए कि आपकी अना घटी हुई है। आपको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, लोग आपको अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं। फिर अगला सवाल करें, क्या मैं तनकीद पे गौर करती हूँ? इसमें भी ये तीनों दर्जे ढूंढिएगा। कोई काम करते हुए मैं सोचती हूँ कि लोग क्या कहेंगे? इसी तरह से हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। अगर ये लगे कि हमारी अना घटी हुई है तो इसका इलाज क्या है? खुद को अल्लाह की निगाहों से देखना शुरू करें। मुझे अल्लाह ने पैदा किया, कितने प्यार से पैदा किया, वो मुझसे माओ से ज़्यादा प्यार करता है। अपने एक एक उज्व को देखें, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया, ये सोचेंगे तो आपका मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, कभी भी एहसास कमतरी नहीं होगी। अपने ऐप तलाश ना करें, कम से कम आईना देखें, मनफी जुमलों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे ज़ाया होने से बचा दे। फिर इसी तरह अगर आपके अंदर एहसास बरतरी है तो क्या करें? नंबर एक के शुक्र करें अल्लाह का कि आपको एहसास हो गया। ज़ाहिर बीमारी का पता लग जाए तो फिर इलाज तो मुमकिन है ना। फिर अल्लाह से दुआ करें, मदद मांगें, अपने लफ्ज़ों में गिने, दिन में कितनी दफ़ा लफ्ज़ मैं बोलती हूँ, ये आप सबका टेस्ट है। आपने ख़ुद को नंबर देने हैं कि एक दिन में अमूमन कितनी बार अपने जुमलों में लफ्ज़ मैं करती हूँ। देखिए, मैं तो बकरी करती है, वही अच्छी लगती है, इंसान तो अच्छा नहीं लगता। इस लफ्ज़ को कम करें, ठीक है? अपने साथियों से कहें कि जब मैं बोलती हूँ और मैं का लफ्ज़ मैं बोलूँ तो मुझे इशारा कर दिया करो। जो लोग बहुत अनापरस्त होते हैं वो मैं का लफ्ज़ बहुत बोलते हैं। फिर इसी तरह जब बंदे में अना ज़्यादा होती है तो इसका असर क्या होता है कि इंसान बेअदब हो जाता है। आदाब ख़त्म होते हैं तो अदब सीखिए। बदतमीज़ी से तो नहीं बोलती, बड़े छोटे की तमीज़ है मुझे। हमारी अना हमारी बुलंदी को मुंतखब करती है। इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि जूँ ही आपने असल मुकाम पहचान लिया तो आप लोगों के तो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। कुछ लोग इतनी बातें सुन के आ जाते हैं, जिसने कहा सुना दे मजाक हंसते, क्यों भाई मेरे पर क्यों बात की आपने, एक्सक्यूज़ मी क्या कहा आपने, बस ये जुमला बोल दें अगला खुद नहीं 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 मैं नहीं। कई दफ़ा लोग आपको देख के हंसेंगे, क्यों भाई मेरी माँ ने भी मुझे 9वां पेट में रखा है, मेरे में कमी क्या, आप मेरे ऊपर क्यों हंसती हैं। यकीन करें आपको अगर अपनी रिस्पेक्ट करवानी आ जाए, कभी किसी सास की ज़रूरत नहीं है रात जाते आते बैठे आपको ताने दें, और किसी नंद की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको रात जाती की सुनाए, और किसी भावज की ज़रूरत नहीं, और किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको रात जाती सुना दे। प्यार से अदब से क्या कहा आपने, एक्सक्यूज़ मी ये किसको कहा आपने, बस इतनी बात करके उठ जाए। अगली दफ़ा अगला नहीं बोलेगा, हम जान के मजलूम बनते हैं और फिर अगले को जालिम बनने का मौका देते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर अना को बिल्कुल बराबर मुनासिब तौर पे कर दे, ना एहसास बरतरी हो और ना एहसास कमतरी हो। फिर इसके बाद पारे कैंट पे आयत 54 से 58 में अल्लाह ताला कुछ निशानियाँ दिखाता है कि अगर आज तक इसकी कदर नहीं आई तो देखो ये क्या कुछ हो रहा है। कैली फल के पकना और कायनात की चीज़ों पे जो हम रात दिन देखते हैं लेकिन गौर नहीं करते, ये आयतें भी दिल की तख्ती पे लिखने वाली हैं कि अल्लाह की मोहब्बत को बेदार करो। इन आयात में ज़मीन की बात है और अल्लाह के नबी ने कहा कि दिल ज़मीन की तरह होते हैं, कुछ ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ होती है, वही इलाही का पानी ऊपर से आता है, दिल में ईमान का बीज सोया होता है, वो उठता है और अमल के पौधे लगने लगते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ऐसा ही कर दे। और कुछ तो ऐसे सख्त होते हैं, सुनते हैं भीगते हैं लेकिन टस से मस नहीं होते, कोरे के कोरे सुन सुन के सुन हो जाते हैं। और फिर आखिर में अंबिया कराम की कौमों के ज़रिए से कुछ मिसालें हैं पारे के एंड तक कि कुछ लोगों के दिल हरे थे, उन्होंने नबी को माना, उनके साथ चल पड़े, जैसे कौम नूह के वो लोग जो कश्ती में सवार किए गए और बाकी झुटलाने वाले थे। हज़रत नूह पहले साहिब शरीयत थे, 950 साल तबलीग की और जवाब में 60 से 70 लोग सिर्फ मुसलमान हुए। हिसाब लगाइए हर 12-13 साल बाद एक शख्स बनता है उनके पास आने वाला। क्यों खड़े रहे, क्योंकि अल्लाह के लिए काम कर रहे थे। तो मा कान लिल्लाह ही बकिया, जो अल्लाह के लिए काम करेगा वो कभी किसी की मुखालफत और किसी की तारीफ़ों से नहीं हटेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने मुहासबे की तौफीक अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पारा नंबर 8 पूरा हुआ। सारे पारे के जो मेन नुक्ते थे वो हमने देख भी लिए, इन आयतों में से देखा। अब आखिर में याद रखने की बातों को देखते हैं कि मुहासबा करना है वो तो करते ही रहना है, वो एक दो दिन का सफ़र नहीं है।